मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 3 फरवरी 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो मैंने विषय चुना है, सच पूछे तो उसे अब हम वसंत के ही कंटिन्यूएशन में लिया गया सब्जेक्ट कह सकते हैं। वसंत के संदर्भ में मैंने जीवन में संतुलन की बात कही थी और संतुलन के बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड में उसी को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती पूजन को आधार बना करके हम लोगों ने कुछ ज्ञान की चर्चा की थी और ज्ञान को सीधे सीधे जीवन के संतुलन से जोड़ा था। अब मित्रों, मैं थोड़ा सा ज्ञान को भी डिफाइन करना चाहूंगा और सच यह है कि मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं, इसका श्रेय भी आप को ही है, अच्छा या बुरा जो भी हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आप लोगों के मेल इस विषय पर आ रहे हैं बहुत एनकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। और सच पूछे तो यदि आप लोग इसी तरह से एक्टिव लिसनर बने रहे तो डेफिनेटली आपकी यह जो जागरूकता है न केवल मुझे ही ज्यादा और जागरूक कर देगी बल्कि जहां भी आप जागरूक होंगे सामने वाले को वो और अधिक जागरूक करती रहेगी। इसलिए मित्रों, कहीं न कहीं मुझे लगता है कहीं न कहीं कि सामने वाला हमको क्या दे रहा है यह हम पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम क्या ले रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम उसे क्या क्या देने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आपसे अपने कुछ विचार शेयर कर रहा हूं। मित्रों, मैंने एक किताब लिखी है, जीवन का महामंत्र हनुमान चालीसा, और उसमें मैंने हनुमान चालीसा की व्याख्या की है कि हनुमान चालीसा में जो भी 40 दोहे हैं उन 40 दोहों का क्या अर्थ है, उसमें इनफैक्ट जीवन के कैसे मंत्र मिलते हैं। तो वो बड़े डिफरेंट किस्म की व्याख्या है। ये किताब लगभग मैं समझता हूं कि 2-3 साल पहले आ चुकी है और आप लोगों का काफी उससे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, और इस बात की चर्चा में इससे पहले भी मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद मैं एकाध बार कर चुका हूं। दोस्तों, उसमें शुरुआत ही हनुमान चालीसा को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी एक चौथी लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है, जैसे है ना श्री गुरुचरण सरोज ये तो सब चलता है, फिर उसी की चौथी लाइन है जो दोहे के फार्म में है और वो है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये मतलब भक्त आप कह लीजिए कि हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है, शुरू की 4 पंक्तियों में वही है, तो वो कह क्या रहा है इसको जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने समझा है मैं वही आपको समझा सकता हूं, जो व्याख्या मैंने की है कि हनुमान से हम क्या मांग रहे हैं। देखिए, हम उनसे मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, जो ओम जय जगदीश हरे में जो आरती है उसमें क्या मांगा गया है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे, उसमें हम सुख मांग रहे हैं, संपत्ति मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम निरोग रहें, शरीर में हमारे कष्ट न हो, हम ये मांग रहे हैं ओम जय जगदीश हरे में। लेकिन हनुमान चालीसा में हम क्या मांगते हैं, हनुमान चालीसा में कहते हैं कि मुझे बल दो, बुद्धि दो और विद्या दो। अब इसको थोड़े से समझने की बात है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि फिर हरहु कलेश विकार। ये हरहु कलेश विकार क्या है, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका जैसी ही बात कही जा रही है। कष्ट मिटे तनका का मतलब वही हो गया, हरहु कलेश विकार, और इसके बाद बल से शरीर जुड़ गया क्योंकि बल तो शरीर में होता है और अगर शरीर में विकार हो गया, शरीर में कष्ट हो गया तो बल का कोई अर्थ रह ही नहीं जाएगा। लेकिन मित्रों, यहां मैं जो समझ रहा हूं कि भक्त हनुमान से क्या कहना चाह रहा है, मैं इसे डिफरेंट तरीके से देखता हूं। आम तौर पर जो इसकी व्याख्या की जाती है वो व्याख्या इस तरीके से की जाती है कि हे प्रभु, हे हनुमान, मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो और मेरे विकारों को हरो, कष्टों को हरो, हरहु क्लेश विकार, जो भी मेरे में दुख दर्द तकलीफ परेशानी है, जो भी क्लेश है, उन सबको दूर कर दो। लेकिन मित्रों, मैं समझता हूं कि शायद ये व्याख्या ठीक नहीं है, या हो सकती है ठीक हो, मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। सबकी दृष्टि अपनी अपनी होती है और सबकी अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वो चीज उसे ठीक लगती है और उसी तरह से जीवन बनता भी है। जैसा हम समझते हैं वैसा ही हम करते हैं और जैसा हम करते हैं वैसा हमारे साथ होता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैं इसको इस रूप में देखता हूं फ्रेंड्स, इस पर थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा आपका, कि हे प्रभु मुझे बल दो, यानी कि मुझे स्वस्थ रखो, मुझे बुद्धि दो, मतलब मेरे दिमाग को ठीक ठाक रखो, दिमाग का बैलेंस मेरा बना रहे। और इसके बाद करें विद्या दे हूं मुही, विद्या का मतलब है ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, जिसको आप कह लीजिए विवेक, विजडम, ये मुझे दो, और हर हूं क्लेश विकार। क्योंकि अगर तुमने ये तीनों चीज मुझे दे दी तो इस तरह से ये तीनों चीज दे करके मेरे क्लेशों को का हरण कर लो। इसका मतलब है कि यदि तुम ये तीनों चीजें मुझे दे दोगे तो ऑटोमेटिक मेरे जो क्लेश हैं, जो विकार हैं, वो दूर हो जाएंगे। विकार का क्या मतलब है? विकार का मतलब सरल शब्दों में कहें तो गड़बड़ी ही कहेंगे ना, जिसको पॉल्यूशन कह लीजिए। विकार, शरीर में विकार आ गया है तो मैं बीमार हो गया हूं। अगर मेरे बुद्धि में विकार आ गया है, विद्या में विकार आ गया है, तो सीधी सी बात है कि इसकी तो मति फिर गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो क्या कह रहे हैं? बल दे करके मेरे शारीरिक क्लेश विकार को हर दो और बुद्धि और विद्या दे करके। तो अगर ये तीनों चीज हमारे पास आ जाए तो सीधी सी बात है कि हे हनुमान, फिर तो बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, बाकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि जो तीनों चीजें हैं ये हमारे सारे क्लेश और विकारों को दूर करने वाले हैं। यानी कि भक्त कह ये रहा है कि हे प्रभु मुझे ये बल बुद्धि और विद्या दे करके मेरे क्लेश और विकार को दूर कर दो। ये नहीं कह रहा है कि ये तीन चीज दो और मेरे विकारों को भी दूर कर दो, वो कह रहा है कि ये देकर दूर कर दो, क्योंकि अगर ये दे दोगे तो ऑटोमेटिक बाकी चीजें दूर हो जाएंगी। हे प्रभु मेरे आंगन में कीचड़ ही कीचड़ बिखरा हुआ है, तुम वर्षा करके इस कीचड़ को धो दो। ये नहीं कह रहा है कि वर्षा भी कर दो और कीचड़ को भी धो दो, क्योंकि अगर वर्षा होगी तो उसका स्वाभाविक नतीजा ये होगा कि कीचड़ साफ हो जाएगी। तो अगर मुझे बल बुद्धि विद्या मिल गई तो इसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि विकार क्लेश दूर हो जाएंगे। मित्रों, इस व्याख्या के बारे में आप लोग अपने अपने ढंग से सोचिएगा। अब मैं थोड़ा सा ज्ञान और विद्या की बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैडम के पास काफी स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं और जब वो कॉल्स आते हैं तो फिर मैं मैडम से पूछता हूं कि किस तरह के कॉल्स हैं, और अगर वो ठीक समझती हैं तो मुझे बता देती हैं, ताकि मुझे आप लोगों की समस्याओं के बारे में पता लगता रहे कि यंग जनरेशन की किस तरह की समस्याएं चल रही हैं और किस तरह के संकटों से जूझ रहे हैं, क्योंकि उसी आधार पर फिर मैं अपने लाइफ मैनेजमेंट और दूसरी चीजों को भी या किताबों में भी लिखने के लिए मुझे एक दृष्टि मिलती है, आप लोगों से ही मिलती है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ को ही सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। तो मित्रों, उसी के आधार पर फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे इसी माध्यम से फिर ज्ञान और विद्या के बारे में बात करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, उस संदर्भ में मैं नहीं कर रहा हूं जिस संदर्भ में मैं व्याख्या करता हूं, यहां तो मैं उस तरह से बात कर रहा हूं जैसा आप समझते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, सूचना अर्जित कर रहे हैं। ज्ञान तो क्या कह रहे हैं, लेकिन चलिए हम ज्ञान मान लेते हैं। तो विद्या क्या इससे अलग है? यस फ्रेंड्स, ज्ञान का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो विद्या है, वो विद्या है। हम इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर रहे हैं? मित्रों, आपको लग रहा होगा कि हम तो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ करके आते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या समाजशास्त्र और मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब पढ़ रहे हैं, इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना? सामान्य तौर पर तो यही है, और बल्कि मैंने तो देखा है कि जो जितना पढ़ लिख लेता है वो उतना ही एक तरीके से एरोगेंट हो जाता है। हमने पढ़ाई को पूरी तरह से एक रोजगार का माध्यम बना दिया, जीवन का माध्यम तो बनाया ही नहीं है। जबकि सच बात यह है कि जो पढ़ाई है, हमारी जो डिग्रियां हैं, वो जीवन के माध्यम है। उसके माध्यम से नौकरी मिल जाती है, उसे मैं एक एडिशनल चीज समझता हूं, वो एक अतिरिक्त है। मूल उद्देश्य तो हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित करना है, ज्ञान देकर के उसे विद्या तक पहुंचाना है, लेकिन हम विद्या तक नहीं पहुंच पाते। फ्रेंड्स, आप देखिए कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर उसको इंग्लिश में आप करेंगे तो लॉजी मिलेगा, बायोलॉजी है ना, लॉजी मिलता है। अगर आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को लेंगे तो या तो साइंस मिलेगा या शास्त्र मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस, साइंस हो गया ना यानी कि विज्ञान, या फिर आप कह लीजिए समाज शास्त्र, शास्त्र हो गया। तो ये शास्त्र और साइंस है क्या? चलिए शास्त्र के आधार पर मैं समझता हूं कि आपको समझने में आसानी रहेगी। एक है शास्त्र, शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब है हथियार। शास्त्र क्या है? हथियार को चलाने की पद्धति। शास्त्र तो आपके हाथ में आ गया, लेकिन अगर चलाना नहीं आ रहा है तो मैं आपको तोप दे दूं, AK-47 या पता नहीं जो लेटेस्ट शस्त्र है वो आपको दे दूं, अस्त्र शस्त्र, आपको उसका शास्त्र नहीं मालूम, वो चलाना ही नहीं आ रहा है उसको, तो आपके किसी काम का है तो आप कहेंगे भैया वो डंडा दे दो, लाठी दे दो, तो शायद वो मेरे ज्यादा काम की होगी, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दोनों इंपॉर्टेंट है, शस्त्र भी होना चाहिए, शास्त्र भी होना चाहिए, उसको चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए। दोस्तों, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इनफैक्ट इसके दो काम है। नंबर एक कि हमारे दिमाग की जमीन को फर्टाइल बनाना, इसको उपजाऊ बनाना, ताकि ये सोच सके, विचार कर सके, उपजाऊ बन सके, इसमें ताकत आ सके, सोचने समझने की एक दृष्टि मिल सके, साइंटिफिक अप्रोच पैदा कर सके, कार्य और कारण संबंधों के बारे में विचार करने की क्षमता आ सके। ये पहला है, जमीन तैयार करना। और फिर जो दूसरा है मित्रों, वह है कि जीवन को दिशा देना, फिर सोचने समझने के बाद फिर लाइफ पर अप्लाई करना। केवल सोचने समझने से बात नहीं बनेगी, मैं जानता तो हूं, सोचता तो, समझता तो सब कुछ हूं, लेकिन करता नहीं हूं तो बात नहीं बनेगी। सेकेंड है कि आप अप्लाई कीजिए। दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अभी हमारे सिक्स्थ बैच में स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं उनके उन्हें बताऊंगा कि किस तरह से सारे सब्जेक्ट जो है हमें केवल एक निर्णय करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, तो एक तरीके से मैं निर्णय अपने अंदर निर्णय लेने की एक दृष्टि विकसित कर रहा हूं। मैं समझना चाह रहा हूं कि कैसे निर्णय लिए जाते हैं और ये सब निर्णय लेने के आधार बनाते हैं, वहां से सूत्र निकलते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि बायोग्राफीज पढ़िए, क्योंकि उसमें लोगों ने निर्णय लिए हुए होते हैं और आप उनके निर्णयों को जान पाते हैं। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बायोग्राफी के पढ़ने को बेकार समझेंगे, कॉलेज स्कूल के ज्ञान को बेकार समझेंगे, या कह लीजिए कि टॉन्ट भी करते हैं कि इतना पढ़ लिया लेकिन अकल कुछ नहीं है। आपने सुना होगा कि इतना तो पढ़ लिया लेकिन अकल कुछ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? अकल कुछ नहीं है, मतलब किताबी ज्ञान तो बहुत सा है लेकिन जीवन का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। तो मित्रों, ये जितने भी शास्त्र हैं, अस्त्र को, शस्त्र को चलाने के तरीके सिखाते हैं, जिंदगी को जीने का एक तरीके से सलीका बताते हैं। तो दोस्तों, यही है विद्या, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। जब जीवन जीने का सलीका आ गया तो फिर विकार और क्लेश तो आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो आप खुद उन्हें दूर कर लेंगे। तो मित्रों, अब वक्त हो चुका है, अब इसे मैं आगे बढ़ाने की स्थिति में फिलहाल नहीं हूं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यदि आप लोगों की और जरूरत होगी तो फिर हम नेक्स्ट लाइफ मैनेजमेंट में इसी को आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कल शनिवार है और परसों रविवार है, और आप जानते हैं कि गेस्टेड हॉलीडे को मैं आप लोगों से बात करने से वंचित हो जाता हूं, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और मित्रों, अब नेक्स्ट मुलाकात सोमवार को होगी, तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहता हूं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।